दीवा ने अपनी तरफ से आर्यांश को दूसरा मौका देने के बारे में सोच लिया था और उसने आर्यांश से इस बारे में बात भी की थी। दीवा भले ही सब कुछ भूलकर आर्यांश के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो, लेकिन आर्यांश इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो यही चाहता था कि दीवा अपनी लाइफ में आर्यांश से आगे बढ़कर मूव ऑन करे। पहले दीवा को यही लगता था कि आर्यांश शहर का बदला लेने के लिए उसके पास आया था, और जब उसे शहर के जिंदा होने की बात पता चली तो अचानक उसे एहसास हुआ कि वो दीवा से प्यार करता है। आज आर्यांश ने दीवा की इस गलतफहमी को दूर कर दिया था। आर्यांश को बहुत पहले ही इस बात का एहसास हो गया था कि वो दीवा से प्यार करने लगा है। वो अपने दिल को दीवा से बदला ना लेने और सब कुछ भूलने के लिए मना भी लेता अगर दीवा उस रात पार्टी में ना पहुंचती। दीवा वहां पार्टी में कभी नहीं जाने वाली थी। प्रियंक ने उसे फोर्स किया था और उसके पीछे सौरभ बजाज का हाथ था। अब दीवा को समझ आ रहा था कि उसके और आर्यांश के अलग होने में सौरभ का हाथ था। जैसे ही दीवा को ये समझ आया, वो आर्यांश से बात करने के लिए उसके पीछे जाने लगी। आर्यांश सुमन के कमरे में पहुंच गया था, जहां वो डॉक्टर से बात कर रहा था। हमने पूरी रात में इनकी कंडीशन में आने वाले माइनर से चेंज को भी मॉनिटर किया है मिस्टर कपूर। मिसेस वर्मा की हालत काफ़ी क्रिटिकल है, उनकी बॉडी सर्जरी की हालत में नहीं है। फिर भी डॉक्टर गोयंका को लगता है कि वो ये कर पाएंगी, तो मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि सर्जरी यहीं की जाए। मुंबई काफ़ी दूर है और इतने लंबे सफ़र में कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर ने कहा। आर्यांश ने एक नज़र सुमन की तरफ देखा, जो बेहोश पड़ी हुई थी। फिर उसने डॉक्टर की तरफ देखकर शांत आवाज़ में कहा, मुझे डॉक्टर गोयंका पर पूरा भरोसा है कि वो ये कर लेंगी। अगर वो ये सर्जरी यहाँ अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी तरह हमें भी उन पर पूरा ट्रस्ट है। वो एक काबिल डॉक्टर है, जो हमने कल ही ऑपरेशन थिएटर में देख लिया था। लेकिन हम यही कहेंगे कि मिसेज वर्मा की जो हालत है, उसके लिए आपको हर तरह से तैयार रहना चाहिए। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सर्जरी सक्सेसफुल होगी। डॉक्टर ने आर्यांश को हर हालातों के लिए तैयार रहने की सलाह दी। ये पहले ही साफ हो चुका था कि सुमन के पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर दीवा सर्जरी करने के लिए तैयार नहीं भी होती तो उनकी हालत को देखकर लग रहा था कि वो मुश्किल से एक हफ्ता भी निकाल पाने की स्थिति में नहीं थी। आर्यांश ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया था। मौत के आगे वैसे भी बड़े से बड़ा इंसान लाचार हो जाता था। हाँ, बस आर्यांश सुमन को खोना नहीं चाहता था। आर्यांश को सुमन के पास छोड़कर डॉक्टर वहां से जाने लगे, तभी दीवा कमरे में पहुंच गई थी। उसने एक नज़र आर्यांश के चेहरे की तरफ डाली, जो उतरा हुआ था। उसका चेहरा ये बताने के लिए काफ़ी था कि सुमन की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। गुड मॉर्निंग डॉक्टर गोयंका, एक घंटे बाद मिसेज वर्मा के केस को रिपोर्ट करने के लिए मीटिंग होने वाली है, आप वहां पहुंच जाइएगा, डॉक्टर ने दीवा को इन्फॉर्म किया और फिर वहां से चला गया था। दीवा जल्दी से आर्यांश के पास आ गई थी और उसे सहारा देने के लिए उसके हाथ को थाम लिया था। दीवा ने महसूस किया कि आर्यांश का हाथ कांप रहा था और वो एक टक सुमन की तरफ देख रहा था। उसके दिल की हालत दीवा को अच्छे से समझ आ रही थी। सब ठीक हो जाएगा, दीवा ने धीमी आवाज़ में कहा। मैं उन्हें खोना नहीं चाहता हूँ, आर्यांश ने भारी आवाज़ में कहा। मैं कोशिश करूँगी, वो ठीक हो जाएंगी, दीवा ने उसे समझाया। आर्यांश के जहन में डॉक्टर की कही हुई बातें घूम रही थी। उसने दीवा की तरफ देखा और लाचारी से कहा, उन्होंने कहा है कि मुझे तैयार रहना होगा, कुछ भी हो सकता है, और कल रात के बाद वो सुमन माँ को मुंबई ले जाने से मना कर रहे हैं। क्या तुम यहाँ सब संभाल लोगी? दीवा ने हल्के से सिर हिला दिया था। उसने आर्यांश की आंखों में उतरी हुई नमी को देखा। उसने आर्यांश के हाथ को अपने दूसरे हाथ से सहलाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं, लेकिन फिलहाल वो बातें सुमन माँ की हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। मुझे डॉक्टर से बात करने के लिए जाना होगा। आर्यांश ने पलके झपकाकर उसे जाने की इजाज़त दे दी थी। जैसे ही दीवा दूसरी तरफ जाने के लिए पलटी, आर्यांश ने उसके हाथ को पकड़ लिया था। तुम उन्हें कुछ नहीं होने दोगी ना? प्रॉमिस करो कि तुम सुमन माँ को ठीक कर दोगी, आर्यांश बोला। दीवा ने मुस्कुराकर आर्यांश की बात पर हामी भरी और उसके हाथ को अपने हाथ से अलग कर लिया था। आर्यांश को छोड़कर वो तैयार होने के लिए वापस अपने कमरे में आ गई थी, पर दीवा को अब एक अलग ही दबाव महसूस हो रहा था। आर्यांश की उम्मीदें उससे जुड़ गई थीं। एक तो पहले ही सुमन की हालत क्रिटिकल थी, ऊपर से हॉस्पिटल ज़्यादा बड़ा ना होने की वजह से रिसोर्सेज भी इतने अच्छे नहीं थे, उसकी टीम भी उसके साथ नहीं थी। डॉक्टर ने सुमन को यहाँ से ले जाने से मना कर दिया था। ऐसे में दीवा की मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई थीं। वो आर्यांश की उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहती थी। डॉक्टर भी बार बार आर्यांश को हर तरह के नतीजे के लिए तैयार रहने के लिए कह रहे थे। तैयार होने के बाद दीवा मीटिंग अटेंड करने डॉक्टर की टीम के पास पहुंची। उसे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी। इस बीच सुमन की रिपोर्ट के बारे में उन्होंने डिस्कशन शुरू कर दिया था। जैसे ही दीवा वहां पहुंची, सीनियर डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, वेलकम डॉक्टर गोयंका, मुझे लगा आपको आने में टाइम लगेगा। खैर, हमने मिसेस वर्मा की रिपोर्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है और मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि आप उनकी सर्जरी मत कीजिए। सक्सेसफुल होने के जीरो चांस हैं। ऊपर से अगर सर्जरी के दौरान जान गई तो आप तो जानती हैं कि पेशेंट की फैमिली किस हद तक हंगामा कर देती है। दूसरे डॉक्टर ने कहा जो पूरी रात सुमन की हेल्थ को मॉनिटर कर रहा था। दीवा उनकी बातों को गौर से सुन रही थी। उसने बिना कुछ कहे सभी रिपोर्ट को पढ़ा। डॉक्टर का कहना गलत नहीं था, लेकिन वो आर्यांश की उम्मीदों को कैसे तोड़ सकती थी। वो आर्यांश की आंखों में लाचारी नहीं देखना चाहती थी। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद दीवा ने उन सब की तरफ देखा। उसके चेहरे पर नर्वसनेस थी, लेकिन फिर भी उसने हल्का मुस्कुराकर कहा, रिस्क लेकर देखते हैं, सर्जरी की तैयारी कीजिए। आज रात मैं ये सर्जरी अटेम्प्ट करने वाली हूँ। मैं आपको इसकी इजाज़त नहीं दे सकता हूँ डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर ने कहा। मैं पूरा मामला खुद पर लेने के लिए तैयार हूँ, क्या फिर भी आप मुझे एक ट्राई नहीं करने देंगे? दीवा ने उनकी तरफ देखकर पूछा। सोच लीजिए, अगर पेशेंट की जान गई तो इसकी जिम्मेदार आप होंगी। हम क्रिटिकल से भी क्रिटिकल सर्जरी करने से पहले कंसल्टेशन फॉर्म पर फैमिली मेंबर के साइन लेते हैं। डॉक्टर कभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। और आप एक ऐसे पेशेंट की जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हैं जिसके बचने की उम्मीद 1% भी नहीं है, सीनियर डॉक्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। कोई भी समझदार डॉक्टर ऐसा नहीं करता, ये सीधे सीधे अपने करियर से खेलने जैसा था। लेकिन फिर भी दीवा ने हाँ में सिर हिला दिया था। दीवा के इतना फोर्स करने पर सीनियर डॉक्टर को भी हाँ कहनी पड़ी। सुमन जब ट्रैवल कर ही नहीं सकती थी तो दीवा ने भी और देर करना सही नहीं समझा। ज्यादा देर करने पर शायद उनकी तबीयत और बिगड़ जाती, तो दीवा ने आज रात ही इस सर्जरी को करने का सोचा। जहां आर्यांश दीवा के आने का इंतजार कर रहा था, तो वहीं दीवा इस वक्त अपनी चुनी हुई टीम के साथ इस केस पर डिस्कस कर रही थी। आर्यांश सुमन को अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकता था। उसने दीवा को कॉल भी किया, लेकिन दीवा ने रिसीव नहीं किया था।
आखिर कहाँ रह गई? आई होप कि सब ठीक हो, कहीं मैंने उसे ज्यादा प्रेशराइज तो नहीं कर दिया, आर्यांश खुद से बड़बड़ाकर बोला। शाम तक भी दीवा जब वापस नहीं आई, का आर्यांश ने कमरे में मौजूद नर्स से कहा, क्या आप 10 मिनट के लिए इनका ध्यान रख सकती हैं? मैं बस अभी आ जाऊंगा। वो अभी सुमन के कमरे में आई थी। ठीक है सर, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा टाइम मत लगाइएगा, मुझे बाकी पेशेंट को देखने भी जाना है, नर्स ने जवाब दिया। आर्यांश ने बाहर जाने के लिए अपने कदम दूसरी तरफ बढ़ाई थी कि सुमन का अटेंडिंग डॉक्टर वहां पहुंच गया था। सुबह उसी ने दीवा को मीटिंग का कहा था। उसे मीटिंग के बाद ही दीवा कहीं नजर नहीं आ रही थी। क्या आपने डॉक्टर गोयंका को कहीं देखा? आर्यांश ने परेशान लहजे में पूछा। मुझे लगता है वो सो रही होंगी, शायद उन्हें आपसे बात करने का टाइम नहीं मिला होगा। उन्होंने आज ही मिसेज वर्मा की सर्जरी करने का डिसीजन लिया है, सब कुछ फाइनल हो गया है और सर्जरी रात को 10 बजे होने वाली है। माइंड फ्रेश करने के लिए आराम करना जरूरी है, तभी वो गई होंगी, डॉक्टर ने बताया। क्या आज रात ही सर्जरी? लेकिन ये जल्दी नहीं है? आर्यांश ने घबरा कर कहा। हाँ जल्दी तो है, लेकिन मिसेज वर्मा की बिगड़ती हालत को देखकर ये डिसीजन लेना पड़ा, डॉक्टर ने जवाब दिया और फिर सुमन के पास बढ़ गया था। सर्जरी से पहले कुछ चेकअप होने जरूरी थे और वो उसी के लिए वहां पर आया था। उसके आने के कुछ मिनट में उसकी मदद के लिए 2 वार्ड बॉय आए थे। वो सुमन को कुछ टेस्ट के लिए लेकर जा रहे थे। सुमन को डॉक्टर अपने साथ ले गए। तब आर्यांश जल्दी से दीवा के कमरे में पहुंचा। कमरा अंदर से बंद था, इसलिए आर्यांश ने हल्के से दरवाजा खटखटाया। उसे लगा कि दीवा जाग रही होगी तो वो दरवाजा खोल देगी, वरना वो उसे फिर से दरवाजा खटखटाकर परेशान नहीं करने वाला था। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आने पर आर्यांश जाने ही वाला था कि तभी दरवाजा खुला और दीवा उसके सामने खड़ी हुई थी। मुझे लगा तुम सो रही हो, मैंने तुम्हें जगा तो नहीं दिया? आर्यांश ने हिचकती आवाज में कहा। मुझे जितना सोना था वो सो चुकी हूँ, बस खुद को थोड़ा शांत करना था। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? दीवा ने आर्यांश की तरफ देखकर पूछा। लेकिन मैं कैसे? आर्यांश की हड़बड़ाकर जवाब दिया। वो उलझन भरी निगाहों से दीवा की तरफ देख रहा था कि तभी दीवा ने उसे कमरे के अंदर खींच लिया था। आर्यांश को अंदर खींचते ही दीवा ने अपने पैर से दरवाजा बंद किया। वो उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले दीवा उसके गले लग गई थी। ऐसे बस कुछ देर ऐसे ही खड़े रहो, मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और फिर मैं आराम से सर्जरी करने जा पाऊंगी, दीवा ने आंखें बंद करके कहा। आर्यांश के हाथ बिल्कुल सीधे थे और उसने दीवा को टच तक नहीं किया था। उसके इस हरकत पर दीवा ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और नाराजगी जताते हुए बोली, देखो अब तुमको ऑपरेट नहीं कर रहे हो, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। और वो क्या? आर्यांश ने भौहें चढ़ाकर पूछा। दीवा के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट उभर आई थी और उसने आर्यांश की कॉलर पकड़कर उसे अपने होठों के करीब खींच लिया था। आर्यांश कुछ समझ पाता उससे पहले दीवा ने अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया था। उसकी इस हरकत पर आर्यांश की आंखें चौड़ी हो गई थी। दीवा उसे किस कर रही थी, उसकी आंखें बंद थी। वो कितना भी नॉर्मल दिखने की कोशिश करे पर सच तो ये था कि अंदर ही अंदर दीवा सुमन की हालत को लेकर परेशान थी। आराम करना तो दूर की बात है, वो तो 1 मिनट के लिए सो भी नहीं पाई थी। उसे ये डर सता रहा था कि अगर सुमन की सर्जरी सक्सेसफुल नहीं रही तो वो आर्यांश की उम्मीदों को तोड़ देगी। अगर सच में सुमन मर गई तो क्या इसका ब्लेम दीवा के ऊपर आएगा? और मान लो कि सुमन मर गई तो फिर आर्यांश दीवा के साथ क्या करेगा? क्या उनके रिश्ते के बीच फिर से दूरी आ जाएगी? चलिए ये तो जल्द ही पता चल जाएगा, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले चैप्टर पर मिलते हैं।